पंथा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापतंगाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यवन्दे गौरवस्मिते हे कृष्णकरुणां सिन्धो युग्मवन्तो जगन्तो गोपेशगोपिका कान्त राधाकान्तसमं सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी
या प्रकाश या वैभव और इसके बाद में जो देवी दुर्गा इत्यादि जो कही जाती है महामाया, ये सब विकृत छाया है इस जगत। तो इस तरह से अनंत रूपों में लोग प्रकाशित और उनमें अनंत रूपों में तीन प्रधान शिव शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति। मायावादी लोग, अद्वैतवादी लोग भगवान को निराकार में शक्ति कहते हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं, किंतु शास्त्रों में सर्वत्र ही उनकी शक्ति मानी गई है। नहीं तो जगत की सृष्टि भी नहीं होती, हम लोग भी नहीं प्रकाशित होते। उसमें एक शिव शक्ति, एक माया शक्ति, एक जीव शक्ति। शिव शक्ति के द्वारा वैकुंठ में जो कुछ भी चीजें हैं सब उनसे प्रकाशित होती है और उनका जन्म और मरण नहीं, वो सब नित्य है। और कृष्ण का शरीर वहां पर उनके परिकरों का शरीर वैकुंठ इत्यादि में या वहां पर ब्रज में जितने भी वृक्ष लता इत्यादि भी दिखते हैं, सब कुछ जितने भी हैं सब चीज शक्ति का ही परिणति है। और माया शक्ति जीव शक्ति को छोड़कर के और शिव शक्ति को छोड़कर इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ दिखता है वो सब माया शक्ति का परिणाम है। जैसे हम लोगों का शरीर वृक्ष, घास, कीट, पतंग, पर्वत, नदी, नाले, जो कुछ भी इस जगत में देख रहे हैं सब ये माया शक्ति का परिणति है। परिणति माने माया शक्ति का ही वो रूपांतर। और ये शरीर अंदर में जो शक्ति है उसके रहने से हम देखते हैं, ये शरीर देखता है, उसके रहने से ही आंखें देखती हैं, मस्तिष्क काम करता है, पैर चलते हैं, कुछ जो कुछ भी करते हैं, वो जो शक्ति है वो है जीव शक्ति। वो भगवान की का अंश है। कैसा अंश? केवल मात्र तटस्था शक्ति या जीव शक्ति समन्वित ब्रह्म का या भगवान का वो अंश है। अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था कही जाती है। इस शक्ति को अंतरंगा कहते हैं, अंतर अंगा, अंतर अंग में अवस्थित रहती है, इसलिए अंतरंगा। और माया शक्ति को बहिरंगा, बहिरंग में अवस्थित है इसलिए इसको बहिरंगा। और जीव शक्ति को तटस्था कहते हैं। अतः अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति, शक्ति और माया शक्ति के बीच में यह रहती है, इसलिए तटस्था शक्ति। तटस्था में तट स्थिर, तट पर स्थिर, तट किसको कहते हैं? नदी के किनारे उसके तट पर जब रहता है तो उसको तट कहते हैं, जहां पर जल और फल मिलता है। जहां जल और फल मिलता है उसको तत्व कहते हैं, किंतु कहाँ मिलते हैं? कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है, लंबा चौड़ा स्थान भी नहीं है, वो काल्पनिक रेखा है। वो जब पानी कम जाता है तो तट नीचे चला जाए और पानी बढ़ जाएगा ऊपर तो वो तट ऊपर चला जाएगा। दोनों का जो मिलन स्थल है, जल और फल जहां मिलते हैं, ये काल्पनिक रेखा है। कहां मिलते हैं? जिस समय जहां रहते हैं वहीं पर मिलते हैं, किंतु वह इतना बारीक होता है, इतना बारीक, उस पर कुछ सर्वाई नहीं सकता। ये कल्पना आती थी। तो ऐसे ही जीव माया शक्ति और चित शक्ति के बीच में रहने के कारण वो कहाँ पर उपस्थित है ये ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अर्थात जीव स्वरूपतः चेतन है किंतु जड़ माया में प्रवेश कर सकता है इसलिए उसको सतर्क। कब से ये माया में पड़ा हुआ है कोई ठीक नहीं, अनंत काल से, अनादि काल से है। कब से? जब से वो प्रकट हुआ, अर्थात जब से कृष्ण तभी से वो है। तो भी लोगों को समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है, उसका स्वभाव तटस्थ है इसलिए उसको तटस्थ कहा। तट माने क्या? यदि माया की तरफ में देखेगा तो उसको खोप करने के लिए माइक आवरण में वो फंस जाता है, और जब भगवान की तरफ देखता है, भगवान की सेवा की इच्छा होती है, तो वो बैकुंठ की रस में चला जाता है, इसलिए उसको तटस्थ कहा गया। तो अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, ये तीन शक्ति, अंतरंगा स्वरूप शक्ति, सबारूपर, सबारूपर मैंने सबसे श्रेष्ठ है। अंतरंगा शक्ति भगवान के अंगों में या चित्त जगत में प्रकाशित है, इसलिए इसको सबसे ऊपर कहा। ये अंतरंगा शक्ति अथवा चित्त शक्ति सबारूपर सबसे ऊपर में। और कार्य कैसे कहते हैं, कहीं प्रमाण है तो उसके लिए बतला रहे हैं। हाँ, विष्णु पुराण में इसके लिए ऐसे ही नहीं कर दिया। विष्णु शक्ति परावक्ता क्षेत्राख्या क्षेत्राज्ञा तथा तथा अभिज्ञापन संज्ञान कृपया शक्ति रिक्त। अर्थात विष्णु शक्ति का नाम है पराशक्ति, भगवान परम पुरुष हैं, इसलिए परम पुरुष की शक्ति का नाम पराशक्ति है। और वही तीन के रूप में प्रकट है, एक पराशक्ति, एक क्षेत्राज्ञा और एक है अपर। तो यहां पर पराशक्ति हो गई चित्त शक्ति और क्षेत्राज्ञा मानी जीव और अपरा माने माया। माया ये तीन शक्ति के रूप में लिखा है। अविद्या कर्म संज्ञान तृतीय शक्ति ईश्वर, ये जो अपरा शक्ति है ये तृतीय, ये तृतीय अपरा शक्ति। अविद्या कर्म संज्ञान इसको अविद्या भी कहते हैं। सच्चिदानंदमय कृष्ण है, उसको कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंदमय। सच्चिदानंद शब्द में तीन चीजें हैं, सचित आनंद। और वैद्यादि कहते हैं कि वस्तु एक है और सत्य वस्तु एक ब्रह्म है, द्वितीय नास्ति, दूसरा कुछ नहीं। जीव क्या है? वो ब्रह्म ही है, जीवो ब्रह्मैव न अपर, दूसरा कुछ नहीं। और ये जगत असत्य है, वो लोग कहेंगे या कहते हैं तो कहने जिसे तत्व सच्चिदानंद में, ये जो तीन आया ये ब्रह्म सच्चिदानंदमय है, शास्त्रों में भी आया है ब्रह्म सचित आनंदमय। तो ये तीन क्यों हुआ? तीन क्यों? सचित आनंद ये तीन हो गया। तुम कहते हैं एकम एव अद्वितीय, एकम एव अद्वितीय, दूसरा कुछ है ही नहीं, बस एकम एक ही है। तो यहाँ पर सचिदानंद में सचित आनंद ये कैसे हुआ? तो वो कहते हैं जैसे बैंगन में फल बहुत लगे हुए हैं, शंकराचार्य की मैया ने कहा अरे बैंगन ले आओ, तो वो एक छोड़ करके ले आए और तीसरे आए हैं 10-20, तो एक बैंगन में क्या होगा? इसलिए उसकी मैया ने कहा जरा अभी बैंगन ले आना, तो वो एक बैगन तोड़ करके ले आई, समझिया ने कहा कि अरे इतने बैगन में देकर के आई थी और एक ही तू ले आया, तो ऐसे कितने आदमी हैं तो काम कैसे चलेगा, अभी क्यों नहीं लाया, तो मैया एक ही था मैंने एक ही लाया, कैसे ये चलो तो बस उसको ले लो। देखा जी बैंगन एक एक पेड़ में दस दस बीस बीस लग के बड़े बड़े काले काले बैंगनी रंग के बैंगन लगे, कि झूठ बोलना सीख लिया अभी से, एक दो तो, कितने सब बैंगन लगे हैं, अरे नहीं मैया एक 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 ही तो सबको एक एक कर एक ही बैंक, और ये सब तुमको दिखाई नहीं पड़ता है, एक दो तीन नहीं जानता बस एक कर दे दिखाई नहीं पड़ता है तुमको, ये दस बीस बैलून कितने लगे हुए हैं, ऐसा वो है उनको कहा जाता है अगर का जो फेरता
फेरता
मैंने उनको मारने पर भी लज्जा नहीं हुई, मारने पर भी कोई लज्जा नहीं, गाली देने से भी नहीं, काम करते हुए तो उसे कहा गया कि ये सच्चिदानंद उनको कम कहा गया, तो सत माने जो होता है वही चित ही, सत माने सब, चित माने सब, आनंद माने सब, सब एक तीन है लेकिन एक ही है, सचित आनंद तीन नहीं है एक ही, तो ये तीन कैसे कहा गया, पर ये कहा गया क्योंकि एक ही है, सत एक है, चित भी एक है और उसी एक, मैंने तर्क वितर्क झूठ मूठ का बाल का खाल उड़ाते हैं, सत और चित आनंद भगवान तीन प्रकार के है, जगत में जितना जो कुछ है यह तीन भागों में विभक्त हो सकता है, सब चित और क्या, सत माने सत्ता
माने ज्ञान
और चित माने ज्ञान और तीन ही चीज, यदि सब विश्व को भाग कर दिया जाए तो ये तीन ही चीज है, किसी की सत्ता होगी और उसमें ज्ञान कुछ जरूर होगा और उसमें आनंद कुछ होगा, इसके अतिरिक्त और कोई सत्ता ही नहीं, ये तीनों चीजें सत्ता परिपूर्ण रूप में कृष्ण के अंदर है, सत माने सत्ता और चीज माने ज्ञान और आनंद का आनंद ही है सच्चिदानंद, ये तीन ये वृत्तियां हैं पराशक्ति की, उसमें जो चीज कहा है वही एक ही शक्ति पराशक्ति की तीन वृत्तियां हैं, कैसे आनंद से लादी आनंद अंत से लादी और सब अंत से संधि और चीज अंत से संधि, उनकी शक्ति तीन प्रकार की, सब चीज तो चीज अंत से संदिग्ध, संदिग्ध माने ज्ञान, ये ज्ञान ही पीछे भाव के रूप में परिणत हो जाता है, कैसे जैसे मैं हूं, मैं कौन हूं, किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी की पत्नी, ये सब भाव है, यही भाव होने से तब प्रेम होगा, जब तक यह संबंध रूपी भाव नहीं होगा यही भाव अंत में जाकर के कृष्ण के प्रति लागू होने पर यह आनंद का भाव है, चित अंत से संबित, संबित माने नॉलेज ज्ञान, प्रारंभ से लेकर के अंत तक जितना भी ज्ञान होता है ये संबित, जारी ज्ञान परिमाण लादनी संधिनी संबित क्वे को सर्व संशय लाभ तापकारी निशा कोई नो गुण बद, इस जगत में वही संबित संधिनी लादनी किसी न किसी रूप में इस जगत में भी है, यहां पर इस जगत में लाभ तापकारी जो सुख का कारण है वही दुख का कारण हो जाता है। पुत्र नहीं था तो दुख है, पुत्र हुआ आनंद हुआ, अब पुत्र कुपुत्र निकल गया तो क्या हुआ? अधिकांश रूप में ऐसा ही। उसी तरह से सभी कुछ इस जगत में पहले सुख के लिए कारण होता है, अंत में दुख का कारण होता है, या एक ही समय में मिश्रा मिश्रा मैंने सुख और दुख दोनों का कारण। श्रीमद्भागवत में बतलाया चित्रकेत उपाख्यान में, पुत्र हुआ तो आनंद हुआ, मर गया बड़ा
सुख।
इसी तरह से सब जगत ये भरा पड़ा, इस जगत में पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से राग माने आनंद और ये सब कुछ नहीं है। इस जगत में से गुण युक्त, गुण माने सत्व रज और तम, ये तीनों से मिले हुए विशुद्ध रूप में शुद्ध तत्व का कोई पता नहीं। उस जगत में दुख क्या है सुख क्या है ये कुछ लोग नहीं है। उस लोग में तीनों शक्तियां विशुद्ध रूप में अवस्थित होती हैं और कृष्ण में होती हैं। वहां पर ये माइक गुण दुख शोक इत्यादि उसमें कुछ भी नहीं होता। अब लागिनी आनंदांश है, लागिनी बतलाया उस शक्ति को पराशक्ति को, कृष्ण के हलादे का के नाम कृष्ण को आनंद प्रदान करती है, इसलिए उसका नाम है हलादी। हलाद प्रहलाद प्रकृत रूप से आह्लाद आनंद। हम लोगों में क्या है, जड़ विषयों की अनुभूति करके या जड़ वस्तुओं को पाकर के हमारे हृदय में हलाद होता है और थोड़ी देर के बाद में वो वस्तु दूर हो जाती है तो दूर करता है। वहां पर ऐसा कभी नहीं होता, वहां पर विशुद्ध रूप में सब समय रहता है। उस राग का काम ही है क्या, कृष्ण को आनंद दे। कैसे आनंद देता है तो वो उसी के लिए बदला है, सही शक्ति द्वारा सुख आस्वाद है आत्मा। कृष्ण उसी प्रलादनी शक्ति के द्वारा आनंद प्राप्त करते हैं, सुख रूप कृष्ण करे सुख रास्ता। कृष्ण सुख स्वरूप स्वयं है और उसी शक्ति के द्वारा फिर और भी सुख का साधन करते हैं। नौ नवायमान रूप भक्त बने सुख जीते लादनी का, इस साधनी के कारण ही लादनी शक्ति के माध्यम से जीवों को भी सुख दे। यह सुख तीन प्रकार का हुआ, जड़ जगत में जड़ वस्तुओं की प्राप्ति से और सानिध्य से जो सुख होता है वो जड़ सुख का मेटेरियल सुख का है, और जीव के स्वरूप में एक आनंद है वो बहुत थोड़ा है, आंशिक रूप में कण के रूप में है, उसको कहते हैं ब्रह्मानंद सुख। और किस जगत में कृष्ण के सानिध्य में कृष्ण की सेवा से जो सुख पाया जाता है उसको कहते हैं श्रीमानंद। इसके तीन रूप, सत्ता भी वैसे तीन है। उस जगत में जीव का जो स्वरूप होता है शुद्ध तत्व का होता है, उसका जन्म मरण नहीं होता है, और जीव स्वरूप में वो उसका स्वरूप बहुत अणु है, वो माया के द्वारा आच्छादित किया जाता है और कृष्ण के सामुख कराने से माया में नहीं पड़ता। और अभी हमारा जो स्वरूप है ये पंचभूत का स्वरूप है, वही आत्मा को पता है। अभी दो स्वरूप हैं, एक होता है फूल शरीर, दूसरा होता है फूल शरीर क्षितिज अल्पाव गगन समीर पंचरसी तरह अनुमत। ऐसा भगवान ने इसको बनाया है मिट्टी जल वायु इत्यादि लेकर, जैसे एक मूर्ति भी बनाते हैं तो मिट्टी जल इत्यादि लगता है, मिट्टी जल धूप भी चाहिए और भीतर में खोखला भी चाहिए और फिर उसको आग में देकर के पकाते भी हैं। इस तरह से उसमें भी पांच तत्व भगवान ने अद्भुत रूप में इसको बनाया। और उसमें ऐसी बुद्धि मम की लगा दी, मैं की, मैं यही करना, इसका तृप्त करना। जानते भी हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं कि मैं यह करूंगी, मरूंगा भी, कभी इसकी आसक्ति और मैं हूं ये भाव नहीं जाता। कांटा लगने से हम हजार आदमी मुक्त हैं, कभी कांटे में हम थक जाए और दुख और अपमान के लिए, ये ऐसी है। तो वो जो शक्ति है लादनी शक्ति, कृष्ण को वह लाद करती है, आनंद को बढ़ाती है और जीवों को भी कृष्ण से आनंद दिलाती है उसी सेवा में। कैसे लादनी तो शक्ति है, रूप कैसे हुआ? तो रूप हुआ ऐसे, लादनी सार अंश प्रेम ना, लादनी सार अंश सार प्रेम ना। एक लादनी शक्ति है ना, ये आनंद है और उसमें संबित जो थी ज्ञान अथक भाव, ये मिल करके भक्ति हुआ, ये वृत्ति हुई। ये पहले मन में है भाव, पहले कोई भी चीज की रूपरेखा होती है वो भाव से उत्पन्न होती है भीतर में, अंतर में, और फिर उसका ऊपर से दिया। जैसे एक कलाकार है, उसको चित्र बनाना है, तो चित्र कैसे बनाएगा? पहले मन में विभावित होगा, मन में बनाएगा। जब मन में स्थिर कर लिया गया, ऐसे हम आंख, ऐसे नाक, कान, ये सब हम करेंगे, ये मैंने प्रौढ़ कलाकार का, कच्चे कलाकार नहीं। कच्चा कलाकार तो ऐसे होते हैं जो शंकर बनाने बनाते बनाते बंदरगढ़ लिया, शंकर की मूर्ति बना रहा था और बनाते बनाते चेहरा बंदर जैसा हो गया, कहा ये बंदर ही ठीक है, बस बंदर हो गया। ऐसा नहीं, प्रौढ़ कलाकार है, मन के अंदर में भावना करना है कि हमको ये चीज बनाना है और फिर उसी को बाहर निकलना होगा। जैसे हो गया तैसे नहीं, ये कलाकार का काम है, ये तो जैसे हो गया तैसे हो गया, ये नहीं। कलाकार वो है जो अपने मन की दृष्टियों को एकदम जगत में पढ़ा, वो कलाकार। तो वैसे ही ये हलादनी तो सकती है, रूप से धारण किया उसके लिए बदला है। तो संभिनी शक्ति ने भाव मिश्रित हुआ, दोनों मिलकर के हुआ शुद्ध सत्स्वरूपी भाव। वो बहुत रूप में विभक्त होकर के जी हृदय में प्रकटित हुआ। अब उसमें स्थायी भाव, उसके ऊपर में विभाव अनुभाव, सात्विक व्यभिचारी मिलकर के एक रस को प्रकट किया। उस रस का नाम हुआ प्रेम, वही प्रेम आगे बढ़ करके स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। ये महाभाव रूप धारण करता है और वही रूप धारण करके गोपी होता है, लाखों कोटि, और लाखों कोटि गोपियों का भाव समय से मिल करके एक राधा जी। यही राधा जी लादनी सार अंश प्रेम का नाम, आनंद चिन्मय रूप रसे राख्यान, आनंद और चिन्मय, चिन्मय मैंने वैषम्भी, ये दोनों मिलकर के इसका नाम प्रेम हुआ। यही प्रेम आगे बढ़ करके प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग होकर के महाभाव हुआ। अनुराग तब गया, राग हुआ तब, जब उसके भाव नित्य नवीन कृष्ण के रंग में रंग से चले रहते हैं, तब हुआ ये राग। और प्रतिक्षण नवनमयमान होता है तब इसको कहते हैं अनुराग। अनुराग जब स्वसंवेद दशा को प्राप्त होकर के जावद आश्रय वृत्ति में उपस्थित होता है, तब होता है महाभाव। यहाँ पर दोनों मिले हुए संवित और ब्राजन यही महाभाव रूपा राधा का सुजान, यही महाभाव ही श्रीमती राधिका जी का रूप। ये एक ऐसा चिंतामणि है भाव, कृष्ण की समस्त वांछाओं को पूर्ण करता है। ये चिंतामणि है। चिंतामणि किसको कहते हैं? चिंता हो और साथ साथ में कोई भी काम ना करो उसे जरूर। जैसे जागतिक एक चिंतामणि के लिए कहते हैं, मान लें कि कोई सदा व्यक्ति किसी जंगल में आपके करता हुआ पहुंचा, गमी जंगल में एक सुअर को देखकर उसके पीछे घोड़े को छोड़ दिया और वह सुअर छिपता हुआ भागता हुआ टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ कभी जंगल में उसे ले गया। शाम हो गई, जब शाम हो गई तो उसका चंद्रकार हो गया, चंद्रकार में वो विलीन हो गया। अब उसको जब नहीं देखा तो देखा अरे सूर्य तो अब डूब गए, अंधकार हो रहा है, अब कहां जाऊं? कोई पथघाट कुछ नहीं और जंगल में सिंह भालू इत्यादि हाथी ये सब गर्जन करने लगे। अब दर्द मारे सब सबको बड़ी जोर से प्यास और भूख लगी, सब करके चूर हो गया। इतने में वन में एक वृक्ष के नीचे पहुंचा। वो वृक्ष कौन था? कल्पतरु। कल्पतरु मैंने वही चिंतामणि समझो, समस्त इच्छाओं को कल्पनाओं को पूर्ण करने का। तो वहां पर पहुंच करके सब करके देखा, छाया है यहां पर, यदि शीतल जल हमको मिल जाता भाई प्राण निरल होता। इतने में देखा लेकिन शीतल पानी आ गया, पानी तो मिला क्योंकि जब कुछ खाने को मिल जाता। ऐसे में देखा कि खाने के लिए जो कुछ आता था वही आ गया, बड़ा प्रसन्न, खूब खाया पिया। अरे यदि एक पलंग होती है होता तो मैं जरा भी काम कर लो, इतने में पलंग वहां पर आ गया, उस पर भी काम कर लो। जब थोड़ा सा खो लिया कहा था नींद खुली, फैमिल का रात्रि बाघ सिंह गर्जन कर रहे, सोचा कि चाहे कोई सिंह आ गया। इसमें ससुर सिंह जब आ गया तो अरे कहीं तुझे खा ले, खा ले। ये तो जागतिक चिंतामणि या कल्पतरु का ही है। अब अपराधिक चिंतामणि की चिंता कीजिए। अपराधिक चिंतामणि कौन है? यही है महाभाव श्रोता श्रीमती राधिका, जो कृष्ण रूपी परम पुरुष की समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। जो कुछ भी चाहेंगे ना वैसा, और किसी में क्षमता नहीं, न बैकुंठ में किसी को है और न तो ब्रज में है न कहीं, बस एक मात्र श्रीमती राधिका में ही ऐसा नहीं है, उनको पूर्ण करता है। महाभाव स्वयं उभय मध्य राधिका सर्वाधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूप गुणे अति बड़ी है। उभयोर जितनी ब्रज में गोपियां हैं उनमें समस्त गोपियों में राधिका और चंद्रावली गो सबसे श्रेष्ठ, रूप में गुण में सब विषय, और उन दोनों ने भी महाभाव स्वरूपा यम यम माने राधिका जी महाभाव स्वरूपा है। गुरु में सबसे अत्यंत श्रेष्ठ ये है, चंद्रावली से भी श्रेष्ठ है, कृष्ण की अत्यंत वल्लभा है, उनको भी मुग्ध कर देने वाली है, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ मानी। कोई महिला मत महिला वही महाभाव स्वरूपा इस रूप में सुंदर प्रेम स्वरूप देव प्रेम रखा। कृष्ण साधारण रूप में आत्मा राम है और आप सकाम है। उनमें कोई भी कामना नहीं, उनकी समस्त कामना परिपूर्ण है, उनको किसी चीज का अभाव भी नहीं। हम लोग जितना भी पूर्ण हो, हम लोगों में अभाव रहेगा ही, कुछ न कुछ अभाव रहेगा ही। कोई भी ऐसा जगत में नहीं है जो जन्म है उसमें वो अभाव रहेगा। चाहे वो कोई विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनी भी हो जाए, एक दिन मरना पड़ेगा, मृत्यु का अभाव उसमें नहीं है, रोग का अभाव नहीं है। अभाव से ही उसके शरीर का दर्शन हुआ है, इसलिए जरूर है। और जीव भगवान का अंश है, इसलिए यह कभी पूर्ण होगा नहीं कि यह अभाव बना है, किंतु भगवान पूर्ण है। उनसे जितना जो कुछ भी निकलता है वो भी पूर्ण है, और जो निकलने वाला जो है वो भी पूर्ण है, और भगवान निकले हुए होने पर भी वो पूर्ण है, इसलिए भगवान का पूर्ण है। किंतु जीव कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तो प्रेम स्वरूप देव, किंतु कृष्ण में कोई भी इच्छा और वांछा नहीं, यह बात ठीक है, उनको कभी भी कमी नहीं है, उनको किसी से डर नहीं है, उनको शोक नहीं है, मोह नहीं है, कुछ भी नहीं। सब ही एक कमी है, क्या कमी है? नहीं, कमी यह है, जब कोई भक्त उनको सेवा करने की कोई वासना करता है तो उसको भोगने की इच्छा उन्हें हो जाती है। मान लिया कि मुझे प्यास नहीं है, और एक छोटा सा बालक कोई बाल्यही लड़की छोटी थी, बड़े प्रेम से दादू 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 कहती थी या बाबा कहती थी, खूब अच्छा सुंदर सुशीतल जल लाए महाराज या पानी पीजिए। मैं क्या करूँ,
थोड़ा सा
प्यास नहीं, ऐसा कहूँ तो लोग कहेंगे जैसे ये और अच्छी। इसे जब लाई हमने हाथ से ले लिया, प्यास भी नहीं है, कभी मुख से लगा दिया, एक कुछ पानी पी लिया। ऐसे ही कृष्ण में किसी चीज की कमी नहीं है, किंतु उनका यही स्वभाव है, ये जथा मां प्रपद जनते ताम तथैव जो जैसा हमारी सेवा करने की अभिलाषा करता है उसकी उस इच्छा को उसी रूप में पूर्ण करता है। उसकी इच्छा हुई ये ठाकुर को खिला, एक लड़का था, उसके पिताजी थे, पिताजी ने पिताजी ठाकुर की रोज सेवा करते थे, सालग्राम ठाकुर थे, उनकी सेवा करता था, रोज पांच छह मोटी मोटी रोटियां और सब्जी, कभी दाल, कभी दही, कभी माखन, कभी मिस्टी, वो ठाकुर जी को भोग लगाया, भोग लगा करके और ले आकर के उतार करके भोग प्रसादी, और फिर अपने सब लोग परिवार से बैठने से खा लेते। एक दिन वो किसी दो चार दिन के लिए बाहर जाने लगा, तो उसका छोटा सा बच्चा था, बच्चे को बुलाकर के बेटा मैं जा रहा हूँ, आज कोई पुजारी मिला नहीं तो मेरे उपस्थिति में उन्होंने तुम ही ठाकुर को पूजा कर, और ये भोग ठाकुर जी के सामने रख देना, उनको खिलाते जाते, कोई तरह की कमी नहीं है। ये कहकर के वो चला गया। उसकी मैया ने रसोई बनाई, और रसोई बना करके वो रोटी रोटी और सब्जी दाल ठाकुर जी के सामने रख दिया, रख करके खड़ा हो गया। जब ठाकुर जी भोग को आरोगे, तीन बार कहा, फिर आंख बंद कर लिया जैसे उसके पिताजी करते थे, और ताली बजाई और उनको आवेदन करके वहीं पर खड़ा रहा। दो चार मिनट हो गए, फिर आंख खोला तो देखा जी उसको कुछ खाया नहीं जा सका, कैसा पड़ा है। फिर उसने कहा जी ठाकुर जी आप रुष्ट तो क्यों हैं, पिताजी तो आपको देते थे खा लेते थे और मैंने दिया आप खाते नहीं, आप पा लें। फिर आंख बंद किया, देखा जी खा ली, फिर आंख खोला तो देखा जी नहीं खाए, तो उसको बड़ी गिलानी कि मैं बालक हूं और देने नहीं आता है इसलिए नहीं खा, तो बिलख बिलख करके रोने लगा जी प्रभु हमारे देह को आप खा रहे हैं। जब रोने लगा तो अंतर से उसकी ये कामना तो सचमुच में देखा जो ठाकुर जी ऊपर आए सालग्राम और वहां पर बैठ गए और हाथ उसमें से निकल आए और निकल करके ठाकुर जी ने उसे उसके सामने देखा और सब खा लिया। जब पूरा खा लिया तो इसने हाथ धुला दिया, जिसके बाद ठाकुर जी अपने आप सिंहासन पर चले। अब ये किसान हम पर चला गया खाली खाली। सुन मैया को देती थाली, अरे रोटियां कहाँ गई प्रसादी? प्रसादी क्या, वो तो सब ठाकुर जी ने खा लिया। खा लिया ऐसे दो तीन दिन हुआ, उसकी मैया भी बड़ी याद करती थी। अब तीसरे दिन पिताजी मैया ने कहा ये तुम्हारा बेटा कैसा, तुम आता था तो प्रसाद ले आता, सब तो प्रसाद आता ही नहीं, सब कहता ये ठाकुर जी खा लिया, न जाने कौन खा गया। तो वो आकर के कहा जी अच्छा आज दो मैं छीप करके देखूंगा। तो छीप करके देखने लगा तो आज ठाकुर जी आ नहीं रहे। बच्चे ने कहा जी अच्छा आज ठाकुर जी आ क्यों नहीं रहे, आज क्या बात होगी? इशारा से बताया ये तुम्हारे पिताजी छीप करके देख रहे हैं। इसलिए पिताजी जब ये लौट करके गया फिर ठाकुर जी ने खा लिया। फिर खाली खाली क्यों, इतने दिन तक वो नहीं खा, आज खा लिए तो सब बिगाड़ने लग गया। और ये सरल लड़का उनको दिया ठाकुर जी ने ग्रहण कर, इसी प्रकार शरीर सरलता से प्रेम से देने पर वो ग्रहण कर, कुटिल चित्त होने पर हम लोग का भी चित्त किसी और हो जाता बिना प्रेम से नहीं देने। तो पिता का अंत में पिताजी को तो किया हुआ खाया नहीं और उन्होंने हस्तक्षेप किया, पीछे का जन्म उनका किया हुआ सरवना वो पूरी के पास में अलावनाथ में ऐसा ही देखा जाता है, उनका सरवनाश बनता ही करते हैं। तो प्रेम जहां रहेगा उनको भूख होती है, जो सुधा के मुख घर में सत्य में भूखे, और नहीं तो यही ब्रह्मवादियों के लिए आत्मारा आप तो काम, उनको कोई काम नहीं सालक राम जैसे बैठे हुए। और नहीं तो सनातन गोस्वामी के यहां कच्ची अभजली जैसी तैसी खिचड़ी ही मांग करके, अरे कहेंगे तुम थोड़ा सा नमक तो रोटी के साथ में दे दो, ये प्रेम की बात है। तो ऐसा प्रेम होना बड़ा भारी कठिन है। तो कृष्ण को कोई भी कामना नहीं है, किंतु राधा जी की या गोपियों की सेवा की वासना को देकर के उनमें उस चीजों को ग्रहण करने की लालसा होने से ही भगवान का अवतार होता है। अवतार का कारण भी यही है, भक्तों की सेवा को प्राप्त उनके अंदर में भक्तों की सेवा करने की लालसा होती है। इसलिए हम लोग के साधन में भी ऐसी यदि हो कि ठाकुर जी की हम सेवा करेंगे तो ऐसा ही होगा। एक ब्राह्मण से जन्म था दक्षिण देव, नाम था गोपाल, वो महाप्रभु के संपर्क में आकर के भक्त बन गए, नारायण के भक्त घूमते धामते वे पिता के मृत्यु के बाद में परलोक गमन के बाद में उत्तर भारत में आए और गोमती के निर्गम स्थान पर पहुंचे। गोमती माने ये जहां पर की सालग्राम की शिलाएं मिलती हैं, गंडकी तो वो गंडकी नदी जहां से निकलती है वहां पर बड़े सुंदर सुंदर सालग्राम निकलते हैं। सालग्राम का चिन्ह है उसमें सोना लगा रहे हैं और चक्र उसमें रहता है और सोना भी लगा रहेगा स्वाभाविक रूप में। तो वहां पर गए तो एक बड़ा सा उनको सालग्राम मिला, उसको लेकर के वृंदावन में आए और वहीं पर उनकी उपासना करने लगे। झूलन का दिन था, सभी लोग ठाकुर जी को झूला रहे हैं, इनकी भी बड़ी इच्छा हुई है, ठाकुर जी आपको झूले में कैसे झूला, आपका श्रृंगार कैसे करूं, बड़े खेद होकर के सो गए रात में, सावध राम शिला थे उनको क्या श्रृंगार करेंगे, उनको माला ऊपर से रखती तुलसी ऊपर नीचे रख दी, बस यही शिला श्रृंगार। तो रात में सोए तो उन्होंने कहा अरे तुम्हें तुमको दुख हो रहा है हमको श्रृंगार करके चढ़ाएगा, इसी जाओ देखो जी हमारा कितना सुंदर रूप है, अभी जाओ अभी पसंद की नीत खुली। और जाकर के उन्होंने सालग्राम की विद्या को, उन्होंने इतिहास को ऊपर से कपड़ा हटाया, देखा जे सही किए हुए कौन राधा रमन जी, वही सालग्राम जी जब देखा और उलट करके ऐसे चित्त सोए हैं, एक मुख मंडल यहाँ पर बंसी के लिए ऐसे हाथ किए हुए और कमर बंकी और पैरों पर पैर रखे हुए, देख करके आश्चर्य विचकित हो गए, प्रेम में भर गए, गदगद हो गए, खड़ा किया, देखा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन तीनों विग्रहों का की आकृति उसमें खड़ी हुई है, गोविंद जी के चरण, मदन मोहन जी के चरण और गोविंद जी के भक्तक और गोपीनाथ जी का मुखार एक विग्रह के अंदर उसका श्रृंगार किया और झूले पर रख करके और उसको झुलाया दूसरे